نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت. اس میں سے آج ہم شروع کریں گے جنگ خندق، تیسرا غزوہ. اور حقیقت ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ مسلمانوں کی تربیت کا موقع تھا. بعض دفعہ ہم دوسروں پہ نظریں لگاتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اپنے اوپر بھی نظریں لگاتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے، اور بعض دفعہ کثرت قلت میں بدل جاتی ہے. ساری تیاری ہوتی ہے پھر بھی پروگرام اچھا نہیں ہوتا، اور اسی طرح کی باتیں. تو غزوہ خندق مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ابھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کے بعد کیا کچھ ہوا نا، اسی کے سیکوینسز سمجھتے ہیں، اثرات یا اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک جنگ ہو گئی جس کو خندق کہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو بک سے پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شیئر کروں گی. جنگ احد میں اگرچہ قریش کو ایک اتفاقی موقع مسلمانوں کو زور دکھانے کا مل گیا، یہ لفظ اتفاقی موقع ہائی لائٹ کر لیں، صرف ایک اتفاق ہو گیا. اور ظاہر انہوں نے بدر کے زخموں کا انتقام لے لیا تھا، لیکن وہ خوب سمجھتے تھے کہ وہ احد سے فاتح بن کر نہیں لوٹے، اور یہ بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی موجودہ طاقت کے ساتھ مدینہ کی مسلم ریاست کو زک دینے کے قابل نہیں ہیں. وہ ایک سال کے وقفے میں مزید تیاری اور فراہمی صفح یعنی فوج کے بعد لڑنے کا تہیہ لے کر احد سے رخصت ہوئے تھے، اور اس ارادے کا اعلان بھی ابو سفیان نے کر دیا تھا. مگر مکہ سے فوج لے کر نکلنے کے بعد وہ حالات کی ناسازگاری کے باعث واپس لوٹ گیا. قریش اور مسلم ریاست میں ایک بہت بھاری فرق تھا. جاہلیت کی طاقت اپنی روح کے اعتبار سے جامد اور مزحمل بھی تھی، اس کو ہائی لائٹ کریں. جہالت میں اتنا زور زغلبلہ نہیں ہوتا کہ 70 ساتھی گھر میں ان کی لاشیں پڑی ہوں اور بندہ اگلی جنگ پہ نکل جائے، یہ صرف ایمان کو تحفہ ملتا ہے. اور کسی طرح کے نشو و نما کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ جز ہر آن کٹ کر مدینہ کے پلڑے میں گر رہا تھا. مدینہ کی مسلم طاقتیں ایک اصولی نظریاتی دعوتی اور عوامی طاقتیں، لہٰذا وہ متحرک تھی، فعال تھی، سرگرم تھی، اور اس میں نشو و نما کی صلاحیت تھی. اس فرق کی وجہ سے وقت کا گزرنا مدینہ کے حق میں مفید پڑتا تھا، بلحاظ تعداد افراد، بلحاظ تربیت اخلاق، بلحاظ معاہدانہ تعلقات، بلحاظ دفاعی طاقت اور بلحاظ رقبے کی وسعت کے مدینہ برابر نشو و نما پا رہا تھا. اسلامی ریاست قریش کی تجارتی شاہراہیں عملاً بند کرنے میں کامیاب تھی. مکہ معاشی بحران کا شکار ہوتا جا رہا تھا. اسلامی جماعت احد کے بعد کے 2 سالوں میں سخت پیچیدگیوں سے دوچار ہونے کے باوجود خاصا ارتقا ترقی کر چکی تھی، اور قریش نے جس مارکے کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا تھا وہ 1 سال کی دیر ہو جانے کی وجہ سے اب ان سے بہت زیادہ جارحانہ قوت مانگتا تھا. تنہا قریش شاید اتنی مطلوبہ قوت آسانی سے نہ لا سکتے، لیکن مسلم ریاست کے مختلف دشمنوں نے حالات کی مجبوری سے باہمی اتحاد کی راہیں نکالی. خیبر اور وادی القرا میں جا بسنے والے جلا وطن شدہ یہود نے خاصی سرگرمی سے مدینہ پر حملہ کرانے کے لیے تگ و تاز کی. ان کی شرنگیزی کا آغاز مدینہ کے لیے غلہ لانے والے کاروانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے سے ہوا. پھر جب احد کے حالات ان تک پہنچے اور ابو سفیان کے مزید ارادہ جنگ کی اطلاع ان کو ملی اور ان کی جسارتیں بڑھیں، تو انہوں نے بنی غطفان کو خیبر کی کھجوروں کی سال بھر کی پیداوار دے کر اور آئندہ کے لیے بھی ایک مقررہ حصہ ادا کرنے کا پیمان باندھ کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا. اتنا کام کر چکنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک وفد مکہ بھیجا، جس میں سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، حی بن احتب، کنانہ بن الربی بنو نذیر سے تھے، اور حوزہ بن قیس، ابو عمارہ بنو وائل سے تھے، جیسے اقابر شامل ہوئے، بڑے بڑے لوگ یعنی اقابر اکبر سے. انہوں نے قریش کو یقین دلایا کہ تم حملہ کرو، اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح استحصال نہ ہو جائے، استحصال جڑ سے ہی ختم کر دینا، نعوذ باللہ، ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ وفد یہاں سے کامیاب ہو کر لوٹا تو بنو غطفان کے علاوہ بعض دوسرے قبائل میں گھوما. قریش نے بھی اپنے حامی اور حلیفوں میں تحریک کی اور احابش گروہوں کو امداد کے لیے پکارا، جن ڈفرینٹ جو ان کے قبائل تھے نا ان کو بلایا. گویا اب کی بار جاہلیت نے پورے عرب میں سے اپنی حمایتی قوت نچوڑ دی اور غالب کے شعر کا سو سما پیدا کر دیا کہ کیا پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سمانے صد ہزار نمک داں کیے ہوئے. سمجھ آئیے وجہ؟ کس کو سمجھ آئے شعر؟ پرسش کیا ہوتی ہے؟ پوچھنا، کہتے ہیں نا ہم آپ کی مزاج پرسی کا، یعنی جراحت دل کو چل. جراحت کیا ہوتی ہے؟ سرجری. کہتے ہیں کہ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سمانے صد ہزار نمک، یعنی کئی ہزار نمک دانیاں لے کر دل کے علاج کے لیے، یعنی خود ہی دل پہ زخموں پہ نمک ڈالتے ہیں اور پھر حال پوچھنے چلے جاتے ہیں، یعنی سارے اکٹھے ہو گئے. یہ کہہ لے ابو سفیان کی کمان میں 4,000 سپاہی روانہ ہوئے، جن کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ تھے. یہ لشکر جب مراو زہران کے مقام پر پہنچا تو بنی سلیم بھی، جو قریش سے روابط رکھتے تھے جب قریش سے روابطہ رکھتے تھے آ ملے. ادھر بنو اسد، فزارہ، اشیو اور بنو مرہ بھی اپنے اپنے علاقوں سے نکلے. بنی قطفان نے عیینہ بن حسن کی سرکردگی میں مارچ کیا. مجموعی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 6-7، بعض نے 10 اور بعض نے 24,000 تک کا اندازہ کر دیا. ترجیح کے قابل غالباً درمیانی روایت ہے جسے اکثر سیرت انگاروں نے لیا ہے. مراد یہ ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تیاریوں کی اطلاع دومۃ الجندل کے سفر ہی میں مل گئی تھی اور آپ اسی اندیشے سے جلدی واپس بھی آ گئے تھے. مشاورت منعقد ہوئی، تجویز مدینہ ہی میں رہ کر مدافعت کرنے کی ہوئی اور شہر کی حفاظت کے لیے حضرت سلیمان فارسی کا یہ مشورہ قبول کیا گیا کہ ایران کے طریقے پر خندق کھو دی جائے. اس میں جہاں افادیت کا ایک اصول تھا کہ اس طریقے دفاع کا نیا پن عرب حملہ آوروں کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتا تھا، وہاں زیادہ سے زیادہ مفید پہلو یہ تھے کہ سخت جسمانی محنت سے وہ کام ہو سکتا تھا جو کسی مضبوط اور بلند فصیل سے ہوتا، یعنی فصیل ہوتی ہے دیوار. نیز اس طریقے سے کم تعداد کے ساتھ کثیر التعداد دشمن کو روکا جا سکتا تھا اور جانی نقصان بھی کم سے کم حد تک متوقع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر خود خندق کا نقشہ متعین کرنے نکلے. چونکہ شہر تین اطراف سے مکانات اور احاطہ بند باغات کے ذریعے رکا ہوا تھا، لہذا خندق کی ضرورت شمال ہی کے کھلے حصے کی طرف تھی، یعنی پیچھے سے تو دشمن کے آنے کی کوئی صورت نہیں تھی. طے پایا کہ حرہ شرقی اور حرہ غربی لاوے کے درمیان کو ملاتی ہوئی خندق نیم دائرے کی صورت میں جبل سلع کے مغربی کنارے تک پہنچائی جائے. اس حصے کی کھدائی تو فوجی انتظام سے کرائی گئی، لیکن بعض قبائل نے بطور خود اپنے اپنے مساکن کی حفاظت کے لیے اسے اور آگے بڑھایا اور جنوب میں عیدگاہ یعنی مسجد غمامہ یا مصلح کے مغرب سے گزار کر قبا کی جانب دور تک طویل کر دیا. خندق کی کھدائی کے لیے وہی 3,000 مسلم رضاکار مزدور بنے جنہیں سپاہیانہ ذمہ داری ادا کرنی تھی. اس کو ہائی لائٹ کریں. رضاکار کیا؟ بہت دفعہ یہ اردو میں ہم لوگ سنتے ہیں نا، پاکستان میں بھی دیکھیے کہ رضاکار ہے خوشی سے کام کرنے والے، والنٹیئر جیسے آپ کہتے ہیں فری ویلی کہ مسلمان. اور دیکھیے انہوں نے خندق کھودی جو سپاہی بننے تھے. کل کیا پتہ چلا؟ نوٹ کریں، بہت ہی پیارا نقطہ ہے. اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کو کبھی کچھ کرنا پڑتا، کبھی کچھ. ڈیوٹیز بدل جاتی ہیں. تلواریں اٹھانی پڑی تو اٹھائیں اور کھدال اٹھانے پڑے تو اٹھائیں، کوئی مرضی نہیں. تو کبھی کبھی آپ کو مجھے بھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا پڑے گا. یہ سوچ کے کیجئے کہ کر کس کے لیے رہی ہوں، وہ ایک ہی ہستی ہے. نہیں میں نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں، میں کیوں یہ کروں؟ اس لیے کریں کہ آپ رضاکار ہیں، دل کی خوشی سے یہ کام کریں. 10-10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر ٹولی کو 40 ذرا یعنی 20 گز ٹکڑا سونپا گیا. اندازاً اس کی چڑائی 10 گز رکھی گئی ہوگی کیونکہ دشمن کے بعض سوار گھوڑوں کو اس پر سے کوداتے ہوئے اندر گر کر ہلاک ہو گئے تھے. اسی طرح اس کا تخمینی امق، امق تخمینی اندازہ گیس، اور امق گہرائی ڈیپتھ 5 گز سے کم نہیں ہوگا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کودے نیچے کتنی گہری کودتے، 5 فیٹ، فیٹ نہیں گز، گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، 15 فٹ گہری تھی. اللہ اکبر، کہ کوئی کود نہ سکے، کوئی ویسے ہی نیچے سے نہ گزر جائے. اللہ اکبر. मजमुई तौर पर इसका तूल 3.5 मील था। अल्लाह ये वाक्या हैरतनाक है कि 3 हफ्ते में इतना बड़ा काम मुस्लिम रजाकारों ने मुकम्मल कर लिया। तकरीबन 3,08,000 मकब, यानी जिसको आप कहते हैं स्क्वेयर गज, मट्टी को खोदना और इसे मुंतकिल करना कोई खेल ना था। फी कस, यानी हर एक के हाथ, कितना, यानी आप होती तो आपको कितनी जगह खोदनी पड़ती? 100 से ज्यादा मकब गज। मैं आपको इस आपकी जुबान में बता दूं, 300 स्क्वेयर फिट जगह आपके हिस्से में आती। 300 स्क्वेयर फुट आज भी एक बड़ी जगह होती, घर पूरा बन जाता है उसमें। सुभान, क्या क्या इस्लाम ने कुर्बानियां मांगी। आप होते हैं उस वक्त, मैं होती तो करते। और तैयारियां क्या थी, सुन लीजिए ये भी। हम कहते हैं रिसोर्सेज ही कोई नहीं, करें क्या, हालात ही नहीं सूटेबल, करें क्या, अभी तो घर में ही जंग लगी हुई, अब तो लड़ाइयां घरों में चल रही हैं। नहीं, फिर बलहाज़े सामान के हालत ये थी कि खुदाई के कुछ आलात बनू कुरैज़ा से मुआहदे के तहत मुस्तार लिए गए। मुस्तार लोने हैं, उधार लिए गए। और देखिए वो बनू कुरैज़ा अंदर थे, आपको याद है ना जंग के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने अंदर से ही गद्दारी कर दी, लेकिन इनको देने पड़े क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया हुआ था कि जब भी कोई दुश्मन बाहर से हमला करेगा तो यहूद को मुसलमानों की मदद करनी पड़ेगी। यहाँ से सीखिए अग्रीमेंट्स की अहमियत, लिखत पढ़त, रिटर्न। हम बात करते हैं और बदल जाते हैं, करके कुछ जाते हैं, बाद में जाके कुछ और सोचते हैं, तीसरे दिन कुछ और कह रहे होते हैं। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। और टोकरियाँ ना होने के सबब आम मुसलमान तो क्या, अबू बकर और उमर जैसी हस्तियाँ चादरों और दामनों में भर भर कर मट्टी उठाती थी। टोकरियां नहीं थी, वो कढ़ाइयां नहीं थी, वो क्या दाबड़े नहीं थे जिसमें डाल के मट्टी फेंकते, अपने कपड़ों में चादरों में मट्टियां भरते। जिनको काम करना है वो कर लेंगे, और जिनको वक्त का इंतजार करना है वो सिर्फ इंतजार करेंगे, और उनकी जिंदगी में कभी वक्त नहीं आएगा नेकी का, याद रखें। जरा सोचिए, नेकी करते हैं आसान हो जाती है, एक चीज नहीं दूसरा को अल्टरनेट निकल ही आता है, और जो करते ही नहीं वो आज तक कर ही नहीं पाए। क्या उनकी मजबूरियां नहीं खत्म हो रही? मजबूरियां दिन ब दिन बढ़ती हैं, और जब काम करने लग जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन कम हो जाती हैं मजबूरियां। खंदक के साथ जब जा चौकियां बना दी गई जहां से इसके हर हिस्से की निगरानी की जा सके, यानी वहां चौकी समझते हैं जिसमें बैठकर सिपाही देख रहा था। अब खंदक खोद के सोनी के घर जाके कि इतनी तो मेहनत की, अब तुम बीमार हो गए, हमारे पट्टे खिंच गए और घुटनों में दर्द है और कमर दुख रही है, अब क्या करें। खंदक खोद के भी वहां जाके बैठना था, और यख सर्दी, यख बसता हुआ है आपका -10 -20, कहां मर्जी चलती है अल्लाह के रस्तों में। कई वो नेकियां आ जाती हैं जो आप कर ही नहीं पाते फिर भी करनी है, और कई इस रास्ते में वो नेकियां होती हैं जो करें तो मजा आता है। दोनों करवा अल्लाह से, बस हमारा नाम लिखा रख, हमें किसी भी ऐसी मजबूरी का शिकार ना करना कि हम इसे पीछे दें। और एक बात याद रखें, जब तक अपनी जाती जिंदगी के मसाइल को कम से कम पे ले आए, अगर आपकी मेरी घर की जिंदगी में मसले हैं, मसलन देखें मैं अपने ऊपर लेती हूँ, आपके घरों को तो अल्लाह सुकून का जरिया बनाया होगा भी, बिलफर्ज अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी, मेरे अपने ही घर में कोई मसला चल रहा है बच्चों से, मियाँ से, सास से, फैमिली से, जो भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, क्या मैं यहाँ आके आपको सुकून से पढ़ा सकती हूँ? और क्या मेरे पढ़ाने के अंदाज से आपको महसूस नहीं होगा कि मैं कितना इसको एंजॉय कर रही हूँ और कितना बड़ा डाल रही हूँ, और बार बार भटक 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 जाती हूँ। घरों के मसलों को ख़त्म करें, अपने लिए एक जुमला लिख लें, मैं तो नहीं जानती ना, लेकिन अगर आपके घर में कोई इशू है, कोई भी हो सकता है, और अल्लाह करे कोई भी ना हो, आप उसको फॉर गॉड सेक, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में फॉर गॉड सेक, उसके अंदर जाकर अपने आप को पेश कर दें। घर का माहौल अच्छा बनाए, दिल दिमाग खुश नहीं होगा, सबक याद नहीं होगा, क्लास में तवज्जो नहीं होगी, सेहत खराब होगी, बीमारी लग जाएगी, बीपी लो हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, और हम एक बेचारगी का नमूना बन जाएंगे। मैंने एक दफा पहले भी कहीं सुनाई थी बात कि बाप अपनी बेटी का इशू लेकर एक आलिम दीन के पास गए, और वो उनके दोस्त भी थे, कहने लगे कि दोस्त मशवरा दो। बेटी की शादी की थी, बन नहीं रही, बेटी रूठ के घर आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा तो इशू यही होगा ना कि घर से ही छोड़ के औरत चली गई, या मर्द को निकाल दे, मिसाल है। खैर कहने लगे कि बेटी आ गई है तो आजकल मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मेरा ख्याल है कि मैं उसको खुला दिला दूँ। ये जो दीनदार है ना, इन्होंने कहा कि मुझे एक बात तो बताओ, इशू क्या है? कहता वो ही छोटी छोटी बातें, इख्तलाफ आदात जो भी है, मेरी बेटी को उससे दिल नहीं मिला, ये वो जो भी। आप उसके बाद का जुमला सुनने के लायक है। उन्होंने कहा, अगर तुम बेटी का बाप समझकर अपने आप को इस मामले में डील करो ना, तो फिर तो जाओ बेटी के वकील बनो, उधर से सुबह शाम, इधर से सुलहें, दोस्तियां, बातें, लड़ाई, यानी फिर इस मसले को तूल दो। क्योंकि आप बाप जो है तो आपको अपनी बेटी का साथ देना है। तो फिर जो कहा कि पहले जहर इधर से बात करोगे, तलाक दिलाओगे, फिर उसके बाद तुम इसके लिए नया रिश्ता ढूंढोगे, फिर नई जगह इसकी शादी करोगे, तो जो करो, मतलब जिसको हमारी जुबान में कहते हैं घर घर खेलो। और अगर तुम, जो अगली बात है वो आपके लिए है, और अगर तुम दीन की तहरीक के अपने आप को एक कारकुन समझते हो, अगर तुम एक अंसारुल्लाह, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा गोल तो ये है इस्लाम, तुम अपने छोटे से घर के ही मसले लेके बैठे हुए हो, तुमने जाके नेबर्स को दीन कहाँ सिखाना है और तुमने जाके खानदान को कहाँ सिखाना है? अगर एक दीनी रहनुमा के तौर पे सोचो तो बेटी को बैठ के समझा दो, बेटा मेरा फर्ज था आपकी शादी एक दफा करना, मैंने कर दी है, अब आप इसी के साथ सेट हैं, जो भी करें करें, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जरा सा उसको, जिसको कहते हैं ना, हाथ हिला दें कि आई विल नॉट हेल्प यू, तो आप देखना आपकी बेटी अपने ओन पे क्या करती है। वो जितनी उससे तंग होगी ना, फिर वो सोच लेगी कि अच्छा मैंने ये जंग लड़नी है नहीं। जब हम माँ बाप और पिछलों को बीच में डाल लेते हैं तो हमारा असल इशू खो जाता है। बेटी का बाप बनना है तो करो हर वक्त यही काम, लेकिन दीन को तुम्हारे पास वक्त नहीं है। उसको कहते बेटा मैं बहुत मसरूफ इंसान हूँ, तो आप खुद ही निबट लीजिए बेहतर है। और साथ ही फिर मशवरा भी दिया, दीन का इख्तलाफ ना हो, यानी कुफर और इस्लाम ना हो, यानी वो चीज़ जो हलाल को हराम में बदल दे। इसके अलावा आदतों का इख्तलाफ, सोच का इख्तलाफ, तो क्या हुआ? मुझे बताइए, सगे भाई बहन एक घर में एक माँ की कोख से जन्म लेने लायक जैसे? आप मेरे समेत कह सकते हैं आपके भाई से आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग है? चार भाई हैं ना, तो चार डिफरेंट लेवल होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के, और छह बहनें हैं माशाल्लाह आपकी, तो क्या सारी एक सोच से सोचती हैं? तो कैसे हो सकता है कि गैर इंसान 100% आपकी तरह सोचने लगे? आपका मेरा काम अब सिर्फ है अपने घरों को खुशगवार रखें, प्ले योर पार्ट। आपका क्या हिस्सा है घर के माहौल को खराब करने में? मन तवादा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे अल्लाह उसको इज्जत देता है, पत्थर भी पिघल जाते हैं, ये तो इंसान है। तो आप देखेंगे ये इतने बड़े बड़े काम सहाबा ने कैसे कर लिए। जरा आप बताएं हम मुझे, अगर आपसे 30 स्क्वायर फिट जगह 15 फुट गहरी और उससे इर्द गिर्द खुलवानी पड़े, इज इट पॉसिबल टारगेट? इट वॉज इम्पॉसिबल टारगेट, बट सहाबा और नबी सल्लम ने मेक इट पॉसिबल। वो जाती गमों में नहीं थे। आज हमारी सेहत की कमजोरी की 80% वजह साइकोलॉजिकल और घरेलू प्रॉब्लम्स, ग्रजिस, गुस्से, नाराजगी, सगे बहन भाइयों से, ससुराल से, कितने तो दुश्मन है हमारे। देखिए ना, नबी सल्लम के तो तीन थे, कुफारे मक्का, यहूद मदीना और मुनाफिक, दैट्स इट। हमारे माशाल्लाह उंगलियों पे गिनाऊं तो शर्म आएगी, पहले अपने ससुराल होते हैं फिर बच्चों के ससुराल बुरे लगने लगते हैं, वही जो बड़े लाड़ प्यार से ले और दे के जाते हैं उन्हीं में नक्स दिखते हैं बाद में। क्या मैं और आप घर घर खेल रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी इन कामों के लिए आई है? अगर मैं एक दिन झगड़ लूँ, दूसरे दिन मैं मियाँ साहब से बैठ के बात करूंगी, भाई आप एक ही दिन बात पूरी करें, मैं ये रोज रोज नहीं लड़ सकती, क्योंकि मुझे अभी हक और बातिल की जंग में हिस्सा लेना। और इसमें याद रखें, जो बड़े लोग कहते थे, जो चीज तोड़ नहीं सकते उसको ठंगोरना नहीं चाहिए। किस किस को समझ आई है पंजाबी? ठंगोर क्या होती है? उसमें कट डाल दें, जैसे प्लेटें होती थी ना, बाद वो गिरती थी, टूटती नहीं थी लेकिन दराड़ आ जाती थी। अच्छा वो भी क्या वक्त था, लोग एल्फी लेकर उसको जोड़ते थे, सच्ची आप बताएं, कभी पाकिस्तान में आपने देखा कि घर में किचन में मग्गा कप टूट जाता था, उसकी डुंडी को हैंडल को वो फिर अलफी लगा के जोड़ते थे, और डर ही लगा रहता था चाय पीने के दौरान कि फिर हैंडल हाथ में ना आ जाए। आज इस पिछले 10-15 साल ने हम सबको अमीर बना दिया है, बहुत माल आ गया हमारे पास। ऐसे ही ना, कड़क से फेंक दो, कट कट करके फेंक दो। तो बात का खुलासा, दीन के बड़े काम करने, आप जाके सोचें आज और इस पे कॉन्वर्सेशंस कर लें। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है उसको बताइए, मैंने क्या किया है, आपने क्या किया है, मेरी आपसे ये उम्मीदें थी, आप मेरी उम्मीदों पे बुरे नहीं उतरे, मैंने भी कुछ किया होगा, लेकिन आपने तो कुछ किया होगा ना। आप खूबी ढूंढेंगे ना तो छोटी सी छोटी बात में ढूंढ मिल जाएगी, और आपको खामियां ढूंढनी है तो आप देखें जरा, बड़ी बड़ी अच्छी बातें उस बंदे की मट्टी में डालकर आप कह देंगे नहीं करता तो यह, लेकिन ये मसला है। तो हमेशा वर्स्ट सिनेरियो देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह खैर होगी। इधर भी देख लीजिए, वापस आए खंदक खोदनी पड़ती है, और मेरा तो दिल करता है कि एक जंग को अपनी अमली ज़िंदगी से रिलेट करके हम सब देखें, ओहद की क्या कुर्बानी है, वहाँ नाफरमानी थी। और इधर देखिए, इस 3 हफ्ते पहले मजदूर बने तो फिर चौकियों में खड़े होकर सिपाही बनना है कहीं चैन? ये चैन एक ही दिन आएगा, नम का नौमत इल रोज़, खपा दें अपने आप को, ये चंद दिन की ज़िंदगी आपके मेरे पास, जो होगा देखी जाए, तैयार हो जाए, फिर अल्लाह आपसे काम कराए ना कराए आपका अजर लिख दिया जाएगा। चले चंद जुमले और पढ़ लेते हैं। इधर खंदक की तकमील हुई, उधर शवाल 5 हिजरी में इस्लामी रियासत के मुत्तहदा दुश्मन टिड्डी दल। टिड्डी दल क्या? एक फसलों पे कीड़ा पड़ जाता है उसकी तरफ इशारा है, यानी छोटे छोटे टिड्डी दल फौजी लिए आ पहुंचे, यानी जिनके हौसले भी बड़े कम थे। परेश किनाना रहाबीश अहबाश ने वादी अकीक के करीब बैर रोमा पर पड़ाव डाला, गितफान और बनु असद मशरक में वादी नोमान के पास, जनफ नकमी नामी मुकाम से जबले ओहद तक फैलकर खैमा जन हुए। इधर मुस्लिम फौज ने जबले सला को पुश्त पर लेकर मरकजी कैंप कायम किया, यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप जिस मौके पर नसब हुआ इसकी यादगार के तौर पर आज मस्जिद फतह मौजूद है। देखिए इत्तफाक हुआ देखने का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वो जगह वैसी बड़ी हुई है। इनकलाबे दुश्मन अगर से बड़ी तादाद में मुहाजरा थे, मगर ये खंदक इनके लिए बिल्कुल नया मसला थी। ये नोट करें, हमेशा हरीफ के सामने उस रूप में आए जिसकी वो उम्मीद भी ना रखता। इस तरह की मुजाहमत का सामना इन्हें पहले इन्हें कभी ना हुआ था, और इस सिलसिले की तदाबीर से वो नावाकिफ थे। इनके घोड़े और ऊंट खंदक के बैरूनी किनारे तक ही कारामत होते। इक्का दुक्का घुड़सवारों ने जोश में आकर खंदक पार करने की कोशिश की, मगर वो इसके अंदर गिरकर ख़त्म हो गए। मुख्तलिफ मौके से वो रुख करते, मगर मुस्लिम दस्ते गफलत से काम लिए बगैर सामने मौजूद होते और तीर अंदाज दुश्मन का मुंह फेरते थे। तीरें और नेजे बिल्कुल बेकार थे, बस दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तीर अंदाजी हर रोज हो जाती। आज भी आप सुनते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया की सरहद पे झड़पें हुई, ये उस किस्म की बात थी कि यानी किसी ने कोशिश की खंदक पार करने की तो दूसरी तरफ से तीर आ गया, ये मुराद है। कई रोज के मुहासरे से तंग आकर एक रोज दुश्मन ने बड़ा जोर दिखाया, कभी यहाँ से हमला किया कभी वहां से, मगर कुछ पेश न जाती। आखिरकार कुरैश का शोहरत याफ्ता मोमिर, मोमिर बूढ़ा उम्र वाला शख्स सवार अमर बिन अब्द वुद, अब्द वुद क्या, नाउज़ुबिल्ला, वुद का बंदा, जैसे हम कहते हैं अब्दुल्ला, वुद क्या था, वुद था उनका, जोश में बिफर कर निकला, और इसने इकरमा बिन अबू जहल, हुबैरा बिन अबी वहाब और जरार बिन अल खत्ताब, ये कौन होंगे, हजरत उमर के भाई थे जी, एक ही देखिए बाप है और दो मुख्तलिफ रुख। जरार बिन खत्ताब को उकसाया और फिर बनी कनाना के कुछ लोगों को साथ लिया, और एक मुनासिब मुकाम ताक कर घोड़ा किदा कर पार हो गया, यानी कर ली पार खंदक घोड़े पे बैठ के। दो चार साथी भी इसके पीछे पीछे खंदक पार कर गए, बखिया लोग किनारे पर खड़े रहे। अंदर पहुंचकर इसने ललकारा, फिर हजरत अली मुकाबले पर आए और एक जख्म खाने के बाद इसका काम तमाम कर दिया। ये एक दिन मुस्लिम फौज के लिए इतना सख्त था कि मुख्तलिफ अतराफ से दुश्मन टोलियों की मुदाफियत करने में 4 नमाजें कजा हो गई। याद है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल, कि अल्लाह इन काफ़रों के घरों को आग से भर दे। इन्होंने मुझे सलातुल वुस्ता से रोक लिया, भूल ही गए, इतना उस जंग में बिजी हो गए। मुहासरे की तवालत मुसलमानों के लिए भी बायस इज़्तिराब थी, मगर हरीफ यानी दुश्मन तो अपनी जगह परेशान था, क्योंकि मुसलमान तो अपने घरों में बैठे थे ना, अंदर थे, राशन पानी भी था। तो ये कोई सोच के आए थे कि हमने एक महीने का ज़ादेरा ले जाना है। सलाह मशवरे के बाद एक भरपूर हमला करने के लिए ये तय पाया कि बनु कुरैज़ा को नबी सल्लम के ख़िलाफ़ अहद शिकनी पर इमादा किया जाए और वो अंदर से हमला आवर हों। अबू सुफियान के कहने पर हुयी बिन अख्तब ने यह मिशन अपने ज़िम्मे लिया। वो बनी कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद के पास पहुँचा और मुद्दा बयान किया। इसने पहले तो इनकार किया कि मैंने मोहम्मद सल्लम को हमेशा सादिकुल वाद पाया है, इनसे अहद शिकनी करना मुरव्वत के ख़िलाफ़ है। मगर इब्ने अख्तब ने पूरे ज़ोर से बात दोहराई कि हम लोग फ़ौजों का सैलाब लेकर आए हैं, तमाम अरब हमारे साथ उमड़ आया और ये सारी ताकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की प्यासी है। ये मौका हाथ से देने का नहीं, बस अब इस्लाम के ख़ात्मे का वक्त आ गया है। नीज़ फ़न्ने तरगीब का जादू चल गया। इस सूरत हाल की खबर मुसलमानों तक पहुंच गई। नबी सल्लम ने तहकीक कराई, बात सही निकली। सहाबा के वफद ने आकर अफवाह की तस्दीक की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बस इतना कलेमा निकला, अल्लाहु अकबर हसबुनल्लाहु व नेमल वकील। आप सोचें ज़रा क्या असाब शिकन बात थी कि अल्लाह के नबी उस वक़्त जितना परेशान होते उतना थोड़ा था, लेकिन मोमिन परेशान नहीं होता। आजमाइश और मुश्किलात में क्या कहता है, कहें हसबुनल्लाहु व नीमल वकील। आप भी अपने आप को इस पे चेक करें, हमारी ज़ुबानों से ऐसे वक्त पे क्या होता है। आगे मुहासरा जो हुआ था उसकी डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, शेयर करें कुछ। ये सारा कुछ सुनते वक्त अपने बारे में क्या गुमान आता है, घर का माहौल। तो घर आज कैसे जाना है, सबने घर जाके घर वालों को क्या देना है, स्माइल कैसे देना है, और साथ कहना है कि ये हमें होमवर्क मिला। हंसते चेहरों से घरों में रहा करें, इज़्तिराब हो जाता है। आप देखें वाकई स्ट्रेंथ सोने लगता है, अगर घर में आपसे कोई बात ही ना करे आपको कैसा लगेगा। अल्लाह ताला मदद करे। जज़ाकल्लाह खैर, इतनी काफ़ी है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।